السلام علیکم. Hello and good morning. صبح بخیر, خوش آمدید and welcome back to the dhansudar tarin show in Pakistan jiska naam hota hai Coffee Mornings with Salmeen Ansari. Salmeen Ansari mera naam aur main aapki khidmat mein hazir janab, present boss. 3 तारीख है आज मार्च की, तो इट्स 3/3/2003. फ्राइडे का दिन है, जुमे का मुबारक दिन है, तो जुमा मुबारक टू ऑल दोस पीपल हु ऑब्जर्व इट. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हाटएवर टाइम जोन यू आर इन. और बहुत बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. 25 मिनट्स आई वॉज वेटिंग, इसलिए वेटिंग बिकॉज ये इसीलिए कहते हैं ना, दिस नो सच थिंग इज ओवर कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेट फॉर सम रीजन ये किया गया था कि शायद मैं आज यहाँ से शो नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ वापस, लेकिन नहीं. सो वो सिस्टम सारा एंड एड ब्रेक्स एंड एवरीथिंग वो सारी एडजस्ट होनी थी. बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद से कर रही होती शो आज, तो वहाँ से सारा मटेरियल चलना था, या नहीं शो कर रही होती तो भी वहाँ से या यहाँ से समथिंग ऑफ द सॉर्ट. एनी हाउ, सो मैंने सब्र तहम्मुल के साथ इंतज़ार किया. 5 मिनट वो अदील अपना कर रहे थे इंस्टाग्राम लाइव, वहाँ आई थिंक एक नॉट इनडायरेक्ट तरीके से उनके भी फैन से कुछ बात हो गई, कॉमन कुछ फैंस हैं, हेलो आए हो गया, बिस्किट खा लिया, कोई मसला नहीं. द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज दैट सम थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल. हम सब अक्सर ऐसी चीज़ों का एक दूसरे को भाषण देते हैं जो कि हम नहीं अप्लाई कर रहे होते. तो बेहतर होता है कि इंसान जिस तरह फॉर एग्जाम्पल को कहते हैं ना, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, झूठ बोलना बड़ी बुरी बात है, मैं कभी नहीं झूठ बोलता. तो एक टेंडेंसी होती है ह्यूमन नेचर की, एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस आल्सो, दैट जो चीज़ ज़्यादा इंसान कहता है वो, या वो चीज़ होती है जो वो करता है, या वो चीज़ होती है कि वो उसने या की होती है, या जब करता है तो उसको गिल्टी फीलिंग होती है, उसको एक एक्नॉलेजमेंट होती है उस बात की. एक्सक्यूज मी. तो अगर हम इस चीज़ को क्लेम करते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं फॉर सम रीज़न, कि हाँ वक्त गुजर जाता है, मुश्किल वक्त आ जाता है, कोई बात नहीं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं था, एंड अदर दे विल से इट इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्स. लेकिन जिस शख्स के साथ उनकी इंटरेक्शन हुई होती है उस वक्त, लोग फ्रॉम यू नो भवें चढ़ाने से लेके मुंह पे चपेट मारने तक पहुंच जाते हैं. एंड यू सी दिस इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, नॉट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन and not because of any other reason, honestly speaking. मतलब चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि inflation, 10 दफ़ा हम बात कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में कि लोगों को कितनी बुरी तरह मुतासर कर रही है, और mental health आपकी जो है वो इतनी suffer करती है because you feel so suffocated and you feel so strangled and you feel so you know cornered because of something जिसमें आपका ऐसा कसूर नहीं होता है, तो आप alternate solutions नहीं निकाल पा रहे होते हैं. एनी हाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट लोग जब कोई चीज़ क्लेम करते हैं और करते नहीं हैं, कर नहीं पाते हैं, उस इट इज़ अ क्लियर क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट कि वो दबाव फील कर रहे होते हैं, दबाव फील कर रहे होते हैं ऑफ हैविंग टू प्रूव देमसेल्व्स टू बी अ सर्टन काइंड ऑफ पर्सन. तो जो सेंस ऑफ ओनरशिप की हम बात करते हैं और ऑनेस्टी की बात करते हैं, ऑनेस्टी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपसे कोई सवाल पूछा जाए और आप उसका जवाब दें. ऑनेस्टी का मतलब ये होता है कि आप में अगर एक आदत है अच्छी या बुरी, तो आप उसको जब ज़रूरत है कन्फेस करें. बढ़ चढ़ के बार बार के जब किसी एक चीज़ को आप दिखावे के तौर पे कहेंगे, तो अगर वो उसमें आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और अपने आप को समझाने में कम एफर्ट कर रहे हैं, डिसिप्लिन करने में कम एफर्ट कर रहे हैं, तो ना सिर्फ कॉल ऑफ फेल में तजाद, दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी. सो इफ यू आर नॉट एन इनसिक्योर पर्सन, प्लीज डोंट गो अराउंड प्रोपगेटिंग कि ऐसा होना चाहिए और वैसा. हाँ बिल्कुल, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, एंड देन एक्चुअली गेटिंग वेरी एंग्री बिकॉज आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे एट द एंड ऑफ द डे. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट ए मैच लास्ट नाइट. मुझे तो बहुत मजा आया, नॉट बिकॉज मेरी कोई अफिनिटी नहीं है क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, देयर सो मेनी मेंबर्स ऑफ दैट टीम who I'm, you know, very fond of also. But the team has not come together as a team in literally any match at all. Kya ho raha hai? Update? Achha, update kar lo. Main chuha hil raha tha saath se. At all. Toh wo thodi ek, obviously, disappointing si cheez hai. But, unhone jitna dabao dala, and Shaheen Shah Afridi ki team ne, jis tarah, bilkul jis tarah, बाबर की टीम ने, मतलब कैप्टन के नाम से आप रिकग्नाइज करते हैं ना, परसों वाला मैच बाबर की टीम ने और कल वाला मैच शाहीन की टीम ने, यू कुड सी दैट देयर इज अ स्ट्रेटजी एंड यू कुड सी कि इसके बावजूद कितने प्रेशर पॉइंट्स थे उनके पास शुरू में, दे डिड नॉट गेट एनी विकेट्स, राइट, एंड द बेस्ट ऑफ देयर बॉलर्स वर आल्सो हैविंग अ टफ टाइम एंड देन नॉट गिविंग इन. उस वक्त जो होता है ना गिव इन ना करना, जो मैंने परसों चौथ सवाल भी आप लोगों से पूछा था कि एक मोमेंट ऑफ एंग्जाइटी या इमोशनल प्रेशर हर एक पे आता है. देयर इज नो सच थिंग एज हैविंग अ थिक स्किन, आई एम सॉरी, देयर इज नो सच थिंग एज हैविंग अ थिक स्किन और यू नो बीइंग सो मेंटली स्टेबल कि आपको चीजें ही नहीं मुतासर करती. वो एक लम्हा होता है जिसको आप ट्रिकल डाउन करने दें तो यू कैन ईदर कोलैप्स और यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एट दैट मोमेंट बाय जस्ट टेकिंग अ डीप ब्रेथ एंड मैनेजिंग एज बेस्ट एज पॉसिबल. मुझे तो बड़ा मजा आया कल के मैच को, इसलिए भी मजा आया क्योंकि कल बाकी दिन जो एज आई टोल्ड यू कि चलते फिरते जो है वो नज़र पड़ रही थी या फ़ोन पे या टेलीविजन पे मैचेस की, लेकिन कल का मैच मैं थोड़ा सा तसल्ली से देख सकी बिकॉज आई वाज लाइक एक दो काम जो मुझे करने थे मैं सुबह उठ के कर लूँगी, यूजुअली मैं करती नहीं हूँ. एनी हाउ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, इसके अलावा PSL के अलावा काफ़ी कुछ हो रहा है. गवर्नमेंट स्वॉलोज लास्ट बिटर पिल्स टू कीप IMF स्वीट. भाई अब मिल भी जाए पैसे, अब कुछ हो भी जाए, एंड देन ऑल्सो देयर इज अ बिग डिबेट गोइंग On about के पाकिस्तान के मुखालिफ और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग जो हैं ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम डिफॉल्ट करेंगे और हम बिल्कुल भी डिफॉल्ट नहीं करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा. आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दिस एट ऑल बिकॉज आई थिंक कहने की कोई बात रह नहीं गई है ना इस हवाले से. खैर इसको छोड़ देते हैं. और क्या हो रहा है टेक्स्ट स्पेस में, क्या हो रहा है ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, 3 मार्च को क्या हुआ था उसके वाले से बात करेंगे. अगर स्पेस से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ हो तो वो भी ज़रूर शामिल करेंगे. लेकिन इसके बाद मुझे बता दे, मुझे यहाँ से ऐड चलाना है, वहाँ से चूहा हिला दे माउस अगर यहाँ से चलाना है. हाँ यहाँ से चलाना है, ठीक है, ओके. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. Alright then, what's happening around the world? Let's continue to have a look and see. उसामा अंग्रेजी गाना लगा दें बॉस. नीचे तो नहीं होगा ना यहाँ पे. हाँ अंग्रेजी गाना लगा दे. द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज रिलेटेड टू, मुझे लगता है कि लोग अपने छोटे छोटे तजर्बे जो हैं वो जरूरी नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, अगर शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, कोई मौका ऐसा हो या आपको पता चला अच्छा कोई और शख्स उस तरह की सिमिलर चीज़ मिलती जुलती चीज़ करने वाला है या देखने वाला है एक्सेट्रा, तो नॉट के यू मेकिंग इट अबाउट योर सेल्फ, आप अपने तजर्बे को नहीं उसके ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की होती है तो आप बेहतर तरीके से मतलब उसकी मदद कर सकते हैं कि वो बेहतर तरीके से उस चीज़ को निभा सके. क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि आपको जब पता चलता है कि कोई सिमिलर सिचुएशन से गुजरने वाले, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम तकरीबन सारे लोग ही उससे गुजरते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, किस सतह पर होती हैं, किस उम्र में होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, वो वेरी कर सकता है, बट इंसिडेंसेस आर सिमिलर. तो डू यू थिंक वन शुड बी प्रोएक्टिव अबाउट दिस, और डू यू थिंक यू शुड लेट पीपल लर्न ऑन देयर ओन, खुद लोग सीखें, बताने की नहीं जरूरत है, इसलिए नहीं क्योंकि आप कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप समझते हैं कि उसकी अपनी जर्नी होगी या कोई भी और वजह हो सकती है. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद एक्सक्यूज मी सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अच्छा जी, मैं किस तरह का मैं मिसाल भी देती हूँ, मैं किस तरह की बात कर रही हूँ. मैं इस तरह की बात कर रही हूँ कि जिस तरह मुझे लगता है, स्टाइल भी डिपेंड करता है ना हर एक का, क्या आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका मकसद क्या है कोई चीज करने का. मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो सच थिंग एज, लोग कहते हैं ना लाइट ट्रैवलर होना चाहिए, कम चीजें पैक करनी चाहिए, डिपेंड करता है कि इंसान कौन है. लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि आप जहां भी जा रहे हो, वहां गर्मियां हो या सर्दियां हो, जैसा भी मौसम हो, आप अगर गर्मियां हैं तो आपको एक कम से कम मोटी चीज, एक दरमियानी चीज और एक मोटी चीज अपने साथ रखनी चाहिए हमेशा. और अगर सर्दियां हैं तो तब भी आपको एक आध हल्की पहनने की चीज जरूर रखनी चाहिए, अगर आपके पास गुंजाइश ऐसी है, आप इतने दिनों के लिए जा रहे हैं. अगर आप जा ही 2 दिन के लिए रहे हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है, तब आपको लेयर करना चाहिए कि ऐसी चीज पहने जो कि अगर गर्मी लगे तो आप ऊपर से जैकेट स्वेटशर्ट उतार सकें, और अगर आपको ठंड लगे तो ऊपर से पहन सकें वाली चीज हमेशा. ऑलवेज आई फील, ऑल्सो आई फील कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपको 6 दिन के लिए 6 कपड़े चाहिए क्योंकि धुलाई का टाइम नहीं होगा, फर्ज करें, क्योंकि अगर आप सर्दियों में हो या गर्मियों में हो, अगर आप पूरे दिन एक कपड़ा पहन रहे हैं तो अगले दिन फिर वो नहीं इतना पहना जाता. कुछ लोग जो है वो समझते हैं ये ठीक है, चले कोई बात नहीं. तो आपने फर्ज करें कि 6 दिन के लिए 3 कपड़े या 6 कपड़े, जिस तरह की भी आपकी पर्सनैलिटी रखें. आई बिलीव कि अगर आपके पास हैं और कपड़े, हर एक के पास नहीं होते हैं, तो आपको हमेशा आपको लगे ना मुझे 6 से ज्यादा की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो जरूर फिर एक एक्स्ट्रा रखें. दीज आर माई ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, हमेशा काम आते हैं, ऑलवेज. अब आई केम टू कराची इन वेरी हॉट वेदर, देख लिया था, अंदाजा नहीं था, देख लिया था, कम्प्लीटली समर टाइप में कपड़े जो है, जहाँ भी मैंने टी शर्ट पहनी हुई है लेके आई थी. लेकिन जब सारी मेरी पैकिंग हो गई थी, तो जस्ट वन नाइट बिफोर कमिंग आई पुट दिस डेनिम जैकेट एंड एक स्वेट शर्ट, जो मैंने पहनी भी है. एक दिन मैंने डेनिम जैकेट पहनी थी क्योंकि मैं काम से निकल रही थी, एंड एक दिन मैंने स्वेट शर्ट पहन के मैं यहाँ आई थी क्योंकि उस दिन बहुत हवा चल रही थी सुबह को. सो इट हेल्प्स बिकॉज आई नो माई बॉडी के, यू नो, एकदम ठंड, एंड देन एसी तो वैसे ही दफातर में ऑन है. तो ये छोटी सी मिसाल है, जरूरी नहीं कोई बड़ी बड़ी चीज. मैंने जब अपनी नौकरी की थी ना, और मैं जब कामयाब हुआ था ना, तो मैंने ये किया था, तो तुम भी करके देख लो. नॉट जरूरी, और इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कोई तजवीज़ दे रहा होता है, बट डोंट मेक, एक तो आई डोंट मेक इट अबाउट योर मैं, जस्ट सिंपली आंसर कि क्या आपको लगता है कि अपने तजर्बे के बेसिस पे किसी को मदद करने की नीयत से आपको बता देना चाहिए कि ये चीज़ें पॉसिबली हो सकती हैं, तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, या आपको लगता है कुछ नहीं बताना चाहिए और ज़िंदगी का मज़ा इसमें है कि इंसान खुद ही अपने जो है वो तजर्बे एक्सपेरिमेंट्स करे. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. एलेक्स मर्डॉफ वर्डिक्ट, डिस्ग्रेस्ड लॉयर गिल्टी ऑफ किलिंग वाइफ एंड सन. अल्लाह ताला तुम्हें पूछेंगे, एंड देन ऑब्वियसली सिस्टम भी उसको पूछ ही रहा है. और क्या हो रहा है जी दुनिया में, काफ़ी सारी चीज़ें खुली थी, लेकिन गाना थोड़ा सा हो जाए. वांट टू हैव सम वाटर एंड सी कि मेरी कॉफ़ी आई है कि नहीं. मुलाकात होती है इसके बाद, स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, लेट्स कंटिन्यू टू हैव अ लुक एंड सी. आज का सवाल भी दोहराए देती हूँ कि आपको लगता है कि अपने तजर्बात को शेयर करने से, दूसरों के साथ बांटने से, ख़ास तौर पर अगर आपको लगता है कि वो शख्स भी ऐसी कोई चीज़ करने वाला है, तो वो बेहतर तरीके से तैयारी कर सकता है, माइंडसेट बना सकता है, यू नो, अपने आप को एक रीअलाइनमेंट की तरफ लेके जा सकता है. अगर पहले से उसने कुछ सोच रहा हो, तो शायद आपके एक्सपीरियंस को सुन के वो कहे अच्छा ये भी शायद मुझे करने की जरूरत है, प्रेप करने की जरूरत है. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी रिलेटेड टू ट्रैवल, इट कुड बी जिंदगी, करियर, कॉर्पोरेट लाइफ, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग एट ऑल. क्या आप समझते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए ताकि लोग बेहतर प्रिपरेशन कर सकें, या आपको लगता है कि लोगों को अपने ओन पे ही सीखने का मौका देना चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, स्टीव फॉसेट circumnavigation, बड़ा मोटा ही अंग्रेजी का लफ्ज है, ऑफ द अर्थ. स्टीव फॉसेट बिकेम पहले इंसान जिन्होंने 3 मार्च को 2005 में एक सोलो नॉन स्टॉप circumnavigation की थी हमारी अर्थ की, रिफ्यूल किए बगैर, when he landed in Kansas after more than 67 hours. Interesting, American adventurer थे. English neurologist Roger Bannister पहले athlete थे जिन्होंने 1 mile रन किया था इन लेस देन 4 मिनट्स, यानी हिस्ट्री में. एक्सक्यूज मी, ही पास्ड अवे. उसके अलावा अरे बैकग्राउंड म्यूजिक तो बिल्कुल ही गायब हो गई. उसके अलावा फॉलोइंग अ हाई स्पीड कार चेस, लॉस एंजलिस पुलिस ऑफिसर्स ब्रूटली बीट रॉडनी किंग, एन अफ्रीकन अमेरिकन अमेरिकन मोटरिस्ट. डिस्पाइट अ वीडियो टेप ऑफ द बीटिंग, द पुलिसमैन वर अक्विटेड इन 1992. ऐसा भी होता है, बहुत सारी उसके बाद राइटिंग भी हुई थी. द सेकंड ऑफ द 2 treaties ऑफ ब्रेस्ट लिटोविस्क, ये क्या है भाई, कंक्लूडेड हॉस्टिलिटीज बिटवीन द सेंट्रल पावर्स एंड सोवियत रशिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, वेरी एसेंशियल, 1918 में ये हुआ था. जीन हालो, जो के कुछ तरीकों से शी टू ऑल्सो लुक लाइक मैरिलिन मनरो, एटलीस्ट आई थिंक सो, मतलब वो लुक ऐसी थी ना. सो अमेरिकन एक्ट्रेस जीन हालो, हु वाज कंसीडर्ड द ओरिजिनल ब्लॉन्ड बॉम्बशेल, वाज बोर्न. एक तो ये लफ्ज होना ही नहीं चाहिए औरत के लिए, वो औरत है, वो एक इंसान है, वो खूबसूरत है बेशक, वो सेंशुअल भी है, बट आई डोंट थिंक द वर्ड बॉम्बशेल नीड्स टू बी यूज्ड फॉर वुमेन. बट एनी हाउ, द पैरिस ओपरा, आज गले में ना मुझे लग रहा है ड्राइनेस ज्यादा, नहीं तो मो पानी. द पैरिस ओपरा First opened with a performance of a Pomone by composer Robert Campbell 1671 mein. Yaar, opera itne arse se jo hai wo performances uski ho rahi hain. It's a beautiful form of, it's not just music, right? It's performance and it's theater. And opera is either people will love it or not understand it. कुछ चीज होती है ना, या पसंद होता है या ना पसंद होता है. ओपरा में आपको या समझ आएगी और उससे मोहब्बत होगी, आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगी. आई हैव नॉट मेट एनीबडी जो कहे हाँ ओपरा सिंगिंग मुझे अच्छी लगती है. मतलब इस तरह नहीं ओपरा के बारे में कहा जाता है. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. दैट इज राइट, वेक अप, गुड मॉर्निंग. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ, आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. अच्छा जी, फिर होर की हो रहा है. नसीम इज ट्रेंडिंग, नसीम शाह की बात हो रही है. ही वाज इन अ रियली बैड मूड यस्टरडे. सिकंदर रजा, माय गुडनेस, आई मीन नहीं कहना चाहिए कि पहले क्यों नहीं बुलाया था, जो भी वजूहत थी, बट या थैंक गुडनेस ही इज अराइव्ड एंड अराइव्ड इन स्टाइल. नवाज इज ट्रेंडिंग, कौन सा वाला, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाला यार? पॉलिटिक्स के हवाले से बात हो रही है, जनरल्स ट्रेंड कर रहे हैं. ये ट्विटर की बात कर रही हूँ मैं कि आकर ट्रेंड कर रहे हैं. डोंकी ट्रेंड कर रहा है. व्हाई इज अ खच्चर और अ खोता ट्रेंडिंग? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस. किसी ने कोई बात की ऐसी? क्या उर्दू इज ट्रेंडिंग, क्वीन इज ट्रेंडिंग, इसहाक डार साहब नेम इज ट्रेंडिंग एंड कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इज ऑल्सो ट्रेंडिंग. आई होप वहाँ मामला सेटल हो गए होंगे. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? और ये हो रहा है कि एक सेकेंड, इसको मैं खोल रही थी, ट्रैवल के हवाले से मैं देख रही थी. एक्सक्यूज मी, अ ब्लाउज दैट यूनाइट्स साउथ ईस्ट एशिया, कभी ऐसा सुना है आपने? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. एक पहनावे का एक हिस्सा, ऊपर का ब्लाउज जो कि साउथ ईस्ट एशिया जो है उसको कनेक्ट करता है. लोग समझते हैं, जिनको नहीं या तो बाखबर नहीं होते हैं या उतना मुताला नहीं किया होता है, जनरल इम्प्रेशन, बिल्कुल जिस तरह अमरीका में काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मतलब ये सब मिलती जुलती ही कोई चीज़ें हैं. ठीक है, खत्ता एक है, लेकिन पहनावा, खाना पीना, उठना बैठना, तौर तरीक़े, पॉलिसीज़, गवर्नेंस, बहुत फ़र्क है. बहुत सिमिलैरिटीज़ अगर हैं, बहुत फ़र्क भी, और मुख्तलिफ मुल्क हैं. उसी तरह बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस एक्सेट्रा, ये सब एक जैसे हैं. इनके खाने पीने, पहनावे, उठना बैठना, सिमिलैरिटी ज़रूर होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्टिंक्टिव होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं किसी एक मुल्क की. लेकिन ये एक ब्लाउज है जो कि यूनाइट करता है साउथ ईस्ट एशिया को. क्या मतलब है इस बात का? कि रॉयल कोर्ट्स में 16वीं सदी से किबाया इसको बोलते हैं. एक्सक्यूज मी, सो सॉरी, किबाया इज, किसान एक्सप्लेन करूँ. अब यूट्यूब पर आप लोग शाम को देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा होगा. सफ़ेद रंग की होती है, ठीक है, बड़े सॉफ्ट मटीरियल की होती है. उसके एंड पे आपके पेट के नीचे के हिस्से से जो है वो लेस लगी हुई होती है. और ये जिस तरह ओवरलैप के मोनो स्टाइल नहीं होता, आम जबान में कैसे समझाऊं, जिस तरह अंगरखा नहीं होता, जिसको लोग अंगरखा बोलते हैं, अंगरखा जो कपड़े से एक जो आपकी कमीज का हिस्सा होता है वो एक दूसरे के ऊपर तय होती है उसकी, राइट? या आप इस तरह सोच लें कि डबल ब्रेस्ट जैकेट्स जो होती हैं मर्दों के, अब तो खैर शायद नहीं पहनते हैं, एक के ऊपर एक जो है वो कपड़े की लेयर आती है ना, एक साइड और दूसरे साइड. सो इसको आम अल्फाज में डिस्क्राइब करने के लिए कि बाया जो है एक रिवाइवल एक तो देख रही है कि दोबारा जो है लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, पहन रहे हैं. एंड नाउ इट इज़ बीइंग नॉमिनेटेड टू जॉइन यूनेस्कोज इनटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट, यानी एक ऐसी चीज़ जो कि विरसे में, विरासत के हवाले से बहुत अहमियत रखती है, इतने अरसे से चली आई है, बड़ी खूबसूरत होती है, इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स भी होते हैं, बट इसकी डिस्टिंक्टिव चीज़ें यही होती हैं कि उमूमन सफ़ेद होती है. अक्सर इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो के नेकलाइन उसकी वी के फॉर्म में आ रही होती है और फिर ओवरलैप हो जाता है. नीचे उसकी लेस होती है, बाजुओं के एंड पे भी, आस्तीन के एंड पे भी इसकी लेस होती है. अब इसकी क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस है या कहाँ कहाँ इसको पहना जाता है? तो ब्रुनाई, मलेशिया, सिंगापुर एंड सदर्न थाईलैंड में जो है वो ये इसको अपनाया जाता है. द किबाया इज अ गारमेंट दैट वुमेन मेड इन द आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया एंड वन दैट इज आल्सो फाउंड इन ब्रुनाई, मलेशिया, सिंगापुर एंड सदर्न थाईलैंड. हर रीजन का किबाया जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है और हर स्टिच, कहते हैं ना कि हर जो उसका टांका है वो अपनी एक कहानी बताता है. 5 ममालिक में इसको अपनाया जाता है और अब इसको यूनेस्कोज इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी इनटैंजिबल वुड बी, जिसको आप वैसे तो टैंजिबल इनटैंजिबल में फ़र्क होता है कि अच्छा टैंजिबल एक चीज़ है जो हाथ से छू सकते हैं, उसको आप काउंट कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं. लाइक लव इज एन इमोशन, राइट? सो दैट्स नॉट टैंजिबल. लेकिन लव के एक्शन में एज अ रिजल्ट आप कुछ खरीदें या कुछ करके दिखाएं तो वो शायद टैंजिबल हो सकता है. एनीहाउ, तो इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होगा? यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट, वैसे तो आप उसको छू सकते हैं, जो कि सकाफत और विरसे का एक बहुत बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी करता है. आई फाउंड दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. उसको रिवाइवल, उसको मॉडर्न फॉर्म्स में अब इस्तेमाल किया जा रहा है. तो बहुत सारे आप ममालिक में देखेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग नेपाल, श्रीलंका एंड देन ईस्ट एशियन कंट्रीज जितनी हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, जिनमें मॉडर्न इज आपको जीन्स और टी शर्ट जो कि एक कंफर्टेबल फॉर्म ऑफ गारमेंट है, वो दुनिया भर में आपको मुख्तलिफ जगहों पर नजर आएगा, राइट? लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सिवाय मे बी अगर कोई घूमने फिरने जा रहा है या घर पे है या दफ्तर में जा रहा है, अदरवाइज किसी भी ओकेजन पे, किसी भी फेस्टिवल पे, या कभी कभी ना भी हो, रेस्टोरेंट्स में, दुकानों में, आपको ईस्ट एशिया में खासतौर पे दिखेगा एंड साउथ इंडिया में भी ये काफ़ी कॉमन है कि उनके जो ट्रेडिशनल जो उनका पहनावा होता है, ख़ास मखसूस शलवार कमीज हमारा ट्रेडिशनल है लेकिन हम आम तौर पे पहन लेते हैं, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशंस जो है, जैसा कलीदार, चूड़ीदार, यू नो, अंगरखा, क्या बोलते हैं, शेरवानी, तो ये मौके के लिहाज से होते हैं ना. ईस्ट एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कुछ कंट्रीज में जो कट होता है गारमेंट का, उस लिहाज से जो खास मतलब बनता है वो गारमेंट, सील उसको खास समझा जाता है, वो किसी मौके के बगैर भी आम कपड़े में, जो कि वैसे आम देखने में होता है लेकिन बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, पहना जाता है, अपनाया जाता है. मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग समझते हैं कि, और देखते भी हम ज़्यादातर यही हैं, कि या पॉलिटिशियंस दफ्तर में, गवर्नमेंट ऑफिशल्स जो होते हैं, या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, ऑफिशल्स भी नहीं मैं कहूँगी, या बाकी पूरा पाकिस्तान शादी ब्याह पे शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहनता है. लेकिन अगर आप कुछ मतलब ख़ानदानों में, जो पुराने ख़ानदान हैं या जिनको ओल्ड मनी हम कहते हैं, वहाँ पे या बिजनेस जो करते हैं, जो बहुत अरसे से करते चले आए हैं, उनको आप आम तौर पे देखेंगे कि कलफ वाला शलवार कमीज और उसके ऊपर वेस्ट कोट, यू नो, विद खेड़ियाँ और चप्पल, या इवन चलो जूता भी सही. एंड आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ दैट, फ्रेंकली स्पीकिंग. सो किबाया इज़ अ, इट्स वेरी नाइस टू सी कि इतनी केओटिक और इतनी इंटेंस किस्म की दुनिया में भी ये इस तरह की बड़ी ही छोटी लेकिन बहुत ही आई थिंक ज़रूरी डिटेल्स होती हैं डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, जिनके बारे में हम जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं. तो एटलीस्ट मेरे मुंह पे तो मुस्कुराहट आ ही जाती है. All right then, what's happening around the world? उस पे भी नजर डालते हैं, आपके कुछ जवाब जो आए हैं उन पे भी नजर डालते हैं. एंड I'm feeling and I think maybe looking also a little sleepy. Looking का तो खैर फर्क नहीं पड़ता है और ना पड़ना चाहिए, लेकिन feeling a little, not sleepy, but just मीठी थकान नहीं जिसको वो मुसाद मुस्कान के दिन गुड मॉर्निंग. आई थिंक वन शुड गेट बेटर थ्रू एक्सपीरियंसेस. सो इफ वी वेंट वॉन्ट टू मेक पीपल अवेयर फ्रॉम बिफोर, दे थिंक वी आर बिकमिंग ओवर स्मार्ट वाइल वी वॉन्ट टू टीच दैम, नॉट लर्न दैम मुसाद, टीच दैम वुड बी द करेक्ट वर्ड. या आपकी बात वैसे बिल्कुल ठीक है कि कभी कभी लोग लगता है कि अपनी बात आप कर रहे हैं या ज्यादा यू नो एफिशिएंट. ये लफ्ज इतना गलत तरीके से यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत नहीं है. अच्छा True. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग. यस, अदर्स एक्सपीरियंसेस इज अ लर्निंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वन टेंड्स टू वेस्ट द सिचुएशन एंड मे लर्न थ्रू द हार्ड वे. कि अगर कोई समझा भी देता है तो दूसरा शख्स जाया कर देता है. बट वंस एक्सपीरियंस मे और मे नॉट बेनिफिट, एक्सक्यूज मी, अदर्स इन द सेम सिचुएशन, बट आई डू पे हीड टू अदर्स एक्सपीरियंसेस एंड लर्न. ठीक है, तो आई गेस इट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? कहाँ गया भाई? पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी में 8 रुपए फी लीटर तक इजाफा. अच्छा, वजीर आजम पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा, तो फिर फायदा क्या यूटिलिटी स्टोर्स का? मेरे तो जबड़ा खुल गया एक सेकंड के लिए इसको पढ़ के. IMF की शर्त, बिजली सार्फीन से सालाना 333 अरब सरचार्ज लेने का फैसला. सलाम अलैकुम जी चलते हैं कहीं हम जहाँ पे बिजली की जरूरत नहीं होती है, किसी पहाड़ी पे जाके ना कोई बना लेते हैं अपने लिए भूसे का घर. Honestly, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अदालतों के बाहर मुजाहिरों पर पाबंदी. आयद, अच्छा टमाटर और खीरा नहीं मिल रहे तो आवाम शलजम खाए. क्या ये हमारे किसी बंदे ने नहीं बोला है, बरतानवी वजीर ने बोला ये. तौबा इस्तग़फ़ार, आर यू फ़किंग सीरियस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस यार? अब क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये आप इंस्ट्रक्शन देंगे? पाकिस्तानी बंधुओं को जासूसी पर वरगलाने वाली भारतीय एनजीओ का पर्दाफाश. नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. सीरियसली, कंस्पिरेसी थियरीज ऑफ दिस काइंड बोरिंग एंड ओल्ड हो चुके हैं. रिवायती पंखों के पैदावार और फरोख पर पाबंदी लगाने का फैसला. रिवायती पंखे क्या मतलब है? स्टील वाले जो होते हैं, जो आपकी बड़े नुकसानदेह हो सकते हैं. जामे कराची के तालिब इल्मों ने सस्ते और कम बिजली वाले घरेलू बर्की आलात तैयार कर लिए. बड़ी जबरदस्त बात है ये तो. उसके अलावा दुबई में ऊंटों की क्लोनिंग अरूज पर फीस $50,000 है. वाकई में? मतलब लाइक लेबोरेटरी क्रिएटेड कैमल्स मिल रहे हैं. शकरकंदी पर डीएनए ने कत्ल का 12 साल पुराना मसला हल कर दिया. ये हेडलाइन आपको कुछ समझ आई है? लिखा यही है, शकरकंदी पर या शुक्रकुंदी पर. मैं क्या पढ़ रही हूँ? शुक्रकुंदी पर होगा लफ्ज, बता दें यार. जेर जबर पेश के बगैर भेज देते. डीएनए ने कत्ल का 12 साल पुराना मसला हल कर दिया. व्हाट इज शुक्रकुंदी? बिकॉज ये लिखा तो शक्करकंदी की तरह ही है. सो आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज. लेट मी हैव अ लुक एंड सी. अगर दिलचस्प चीज हुई तो शेयर कर लूंगी. और क्या हो रहा है? चेयरमैन नेपरा का बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज की मंजूरी देने से इनकार. मतलब बिजली आप दे ही नहीं रहे, लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है और उसके ऊपर सरचार्ज पे सरचार्ज, तो बंदा कितने जावा, कितने जावे, नॉट जावा. चले ये तो बहुत सारी, चलो शॉर्ट फॉर्म में चीजें जो समझ आ जाती हैं. इसमें से तफसीली तौर पे मैं किसी पे नजर डालूंगी इस गाने के बाद, बताती हूँ. ठीक है, इंसान अपने आप को डाउट करने लगता है कभी कभार, क्योंकि सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं. उसमें खैर अपने आप को भी थोड़ा सा टोकना चाहिए कि क्यों डाउट कर रहा है. अब आई नो द लव्स ऑफ शक्करकंदी और वो हेडलाइन आगे फिर खून खराब है और किसी के कत्ल के हवाले से बात हो रही है. तो आई वाज लाइक, मैं क्या गलत लफ्ज बोल रही हूँ? कोई और लफ्ज होता है कैसा? तो मैं कह रही हूँ शुक्रकुंदी तो नहीं है कोई लफ्ज क्या, क्योंकि शक्करकंदी तो स्वीट पोटैटो होता है. एक्चुअली इट्स नॉट इवन स्वीट पोटैटो, बट वन टाइप ऑफ इट इज. एनी हाउ, तो इस पर लिखा हुआ था शक्करकंदी पर डीएनए ने कत्ल का 12 साल पुराना मसला हल कर दिया. ठीक है, वो पर आई थिंक जो है वो थोड़ा सा क्या, काफी मिसलीडिंग हो गया. तो एक चीज जो कि शक्करकंदी उसने खाई थी कातिल ने और फेंक दी थी, और उसके ऊपर उसका डीएनए जो है वो मौजूद था, क्योंकि उसने हाथ लगाया था उसको, उसके जरिए एक 12 साल पुराना कत्ल का केस सॉल्व हो गया. इट्स जस्ट अ रिमाइंडर अबाउट, यू नो, पीपल टॉक अबाउट हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस एंड यू नो द थिंग्स दैट दे फाइंड very prominent in me. I will also doubt myself because we're all human. जामे कराची के तालिब इल्मों ने सस्ते और कम बिजली वाले घरेलू बर्की आला तैयार कर लिए हैं. हेडलाइन पढ़ के तो मुझे बहुत खुशी हुई, आगे भी इसको शेयर करती हूँ आपसे. लेकिन और अच्छी बात है कि जब सख्त वक्त आता है तो इंसान अपने आप को पुश करने लगता है, बिकॉज पीपल कांट अफोर्ड बिजली एट ऑल. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो घराने जिनमें फ्रिज, फ्रीजर और माइक्रोवेव और एसी मौजूद है. मैं उन घरानों की नहीं बात कर रही. अगर आपके घर में फ्रिज, फ्रीजर, एसी और माइक्रोवेव मौजूद है तो आप प्रिविलेज्ड हैं बहुत ज्यादा. नॉट कि आपको नहीं बिजली का बिल जो है वो बहुत चुभेगा, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इज प्रिव, दैट मीन्स यू हैव इनफ ईदर कंबाइंड इनकम और व्हाटएवर योर लाइफस्टाइल इज फॉर व्हाटएवर रीजन. Whether it's virasat, whether it's 2-3 people working in the family, whether it's whatever it is, business. आप बहुत privileged हैं. मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि घर में, अगर दो कमरे का घर है, जो कि हमारी बहुत बड़ी population है. दो कमरे का घर मतलब कुल दो कमरा, not दो bedroom, कुल दो कमरा. और पंखा चलता है और फ्रिज की जरूरत तो खैर ज्यादातर लोगों को होती ही है. लोग अगर फ्रिज नहीं अफोर्ड कर सकते तो डीप फ्रीजर रख लेते हैं, ताज़ा ताज़ा खाना पकता है. मैंने अक्सर देखा ये घरों में कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद जो फ्रीज करने की चीज़ होती है वो कर लेते हैं. वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वाली नहीं होती है अभी भी अक्सर घरों में, एट्सेट्रा. तो क्या करें इंसान, कपड़े भी ना धोए और खाना भी ना फ्रीज करे और पंखा भी ना चलाए. तो ये तो एक ये रियलिटी है. तालिब इल्मों ने महंगाई और गैस के बहरान पर परेशान आवाम की निजात दिलाने के लिए बगैर गैस और तेल के गर्म हवा से कम वक्त में सेहतमंद खाना बनाने की मशीन तैयार की. तो किसी ने खवातीन की जिंदगी आसान करने के लिए सस्ती और कम बिजली से चलने वाली आटा गूंदने की मशीन बनाई है. वेरी इंटरेस्टिंग. सो तफसीलात के मुताबिक इन बच्चों ने फूड सिक्योरिटी, मुल्क की फूड सिक्योरिटी को खुद मुख्तार बनाने के लिए जदीद और कम लागत साइंसी प्रोजेक्ट्स पेश किए एंड फूड इक्विपमेंट एग्जिबिशन में 13 से जायद प्रोजेक्ट्स पेश किए जिसमें खाना बनाने और उसे महफूज करने के लिए कम होना चाहिए था गुम लिखा हुआ लागत की मशीनें भी शामिल थी. द फैक्ट इज दैट अगर लोग समझते हैं कि इनोवेशन कम्स फ्रॉम बिग फैक्ट्रीज एंड अमीर लोग, दैट इज नॉट ट्रू. हम अगर इलॉन मस्क की बात करते हैं या हम अगर बिल गेट्स की बात करते हैं, हम किसी की भी बात करते हैं, हु इज बिहाइंड, खुद ना उसने हाथ से भी बनाया, हु इज बिहाइंड समथिंग जिसको बड़ा एग्जेम्पलरी इस जमाने में समझा जाता है, वो शुरुआत गराज से ही होती हैं, कमरे से ही होती हैं, यू नो क्या कहते हैं, सड़क का जो लैम्प पोस्ट है उसके नीचे ही रात भर बैठ के चीज़ों को जोड़ के होती हैं, वहीं से ग्रेट थिंग्स हैपन. दी ओनली थिंग इज कि हमारा एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव नहीं है, तो चीज़ों की प्रोटोटाइप बनाना है, तो प्रोटोटाइप से कमर्शियल लेवल पे लेके आना. अगर आप लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा है तो वो जो उसकी कहानी थी, मुझे याद करने दें, पीयूष बंसल ने जिसको फंड किया था, यार जिस बच्चे का कजन का नाम चरू था शायद, यू रिमेंबर, आई हैव यू, इफ यू गाइस हैव सीन दिस, मुझे बिल्कुल दिमाग में अटक गया है, मैं भी देख के बताती हूँ. जिसने एक ऐसी मशीन बनाना चाही थी जो स्प्रे करना होता है आपको अद्वियात जो स्प्रे करनी होती है खेत में, जो बड़ी मशीनें होती हैं कमर्शियल लेवल पे, तो उसने बड़ी सही बात की थी कि बहुत ज़्यादा ज़मीनों वाले तो कम लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनकी छोटी छोटी अपनी ज़मीनें होती हैं, तो वहाँ पे वो हैवी इंडस्ट्रियल साइज़ की मशीनरी नहीं आ सकती है जो पेस्टिसाइड स्प्रे करे एट्सेट्रा. तो उसके लिए उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी एंड ही मेड अ प्रोटोटाइप. बार बारह दफ़ा उसने कहा, पता नहीं कितनी दफ़ा, कि उसको जब तक ठीक नहीं लगा कि एक चीज़ जो आसानी से हल्के से और यू नो स्मूदली चल सके, तो वो एक साल लगा के अब उन्होंने उस मशीन को उसका प्रोटोटाइप बनाकर अब उसको कमर्शियली अवेलेबल करेंगे. तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना, बच्चे तो बहुत सारी चीज़ें ईजाद करते हैं, नौजवान भी बहुत सारी, मतलब बच्चे मीनिंग नौजवान जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. वी नीड पीपल टू बी बॉदर्ड अबाउट इन्वेस्टिंग. मैं अगेन माई लव फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप इतनी दफ़ा हर तीसरे चौथे दिन मैं कुछ शेयर कर रही होती हूँ कि ये नई चीज़ आई, ये नई कंपनी आई, ये स्टार्टअप आया, इसने फंडिंग ली एट्सेट्रा. लेकिन इन्हीं से मुझे शिकायत इस बात की होती है कि सिवाय गिन के हाथ, मतलब फिंगर टिप्स पे आप गिन सकते हैं कि कौन से स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं. बिग बिजनेसेस को तो आप छोड़ दीजिए अगर वो ये नहीं करते हैं, जो कि परवाह करेंगे मुल्क के मफाद की. हम बात करते हैं, वी टॉकिंग अबाउट द मुल्क इज यू नो गोइंग डाउन द ड्रेन, तो मुल्क की डेवलपमेंट आप उस वक्त क्यों वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आएगी, कोई ऐसी स्टेबिलिटी आएगी तो आप मेहनत करेंगे. यू अब अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम करते हैं, वो भी तो चल ही रहा है ना, तो आप वाइट एंड इट्स यू नो हेल्पिंग सम पीपल, जो भी आप प्रोसेसेस या सर्विसेज जो है वो ऑफर करते हैं, तो आप क्यों समझते हैं कि हमारा फ़र्ज नहीं बनता है. फ़र्ज बड़ा ज़रूरी है, हक़ की हम बात कर जाते हैं कि हम अगर ऐसी चीज़ों की खबरें हमारे सामने आती हैं तो कोई उसमें इन्वेस्ट करे. रिस्क तो हर चीज़ में होता है, ठीक है, इन्वेस्ट करें और ऐसी चीज़ को सामने लेके आए जिससे आम आदमी जो है उसका फ़ायदा हो, वो मुस्तफ़ीद हो सके. आम आदमी स्टेबल होगा तो एक बैकबोन बनेगी, ये याद रखिए. बड़े लोगों से मुल्क नहीं बनता है, आम आदमी से ही मुल्क बनता है. बड़े लोग एटलीस्ट हमारे मुल्क में, ठीक है, ये वो वाला वक्त नहीं है जो पार्टीशन के टाइम पे हुआ था, दैट द पीपल, द फ्यू पीपल विद द ओल्ड मनी बिकॉज द गवर्नमेंट नीडेड मनी एंड दे डिड नॉट हैव मनी गेव सो मच एंड विदाउट एनी इंटरेस्ट दे आई थिंक दे डोनेटेड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. ये वो वाला वक्त नहीं है, यू नो. सो एनीहाउ, दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू कि जब इनोवेशंस की बात आती है पाकिस्तान से, आए दिन हमें कोई ना कोई अच्छी खबर मिलती है, उसको सिर्फ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है. कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा माहौल जहाँ पे उसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो कि लोग उसको इन्वेस्टमेंट उसके लिए उसको उसके प्रोडक्ट को इस काबिल समझें, उसको गाइड करें, उसको प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स के साथ लिंक करें ताकि आगे जाके एक ऐसी चीज बने वो बिजनेस बन जाएगी, बिजनेसमैन का फायदा भी हो जाएगा. सही अगर दिशा सही डायरेक्शन अगर दे दी जाए एंड आम आदमी का बहुत भला हो जाएगा. ऑल राइट देन, इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो. एक तो आई होप कि सब खैरियत रहे बिकॉज आज है जुमा एंड बहुत मुबारक दिन. बट आई ऑलवेज से दिस के खैर किसी भी दिन तमाशे हो सकते हैं मुल्क में, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और जुमा खैर खैरियत से गुजर जाए. दूसरा ये दैट आई विल व्हाट विल आई डू कहते कहते मैं भूल गई कि व्हाट विल आई डू. आई विल रैप अप द शो टुडे बाय हाँ गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन. मुझे लगता है कि इंसान जब जिसका मुसरत ने भी कहा कि हम लोगों को अपने तजुर्बों के यू नो शेयर करके और चाहते हैं कि लोगों के लिए मददगार साबित हो तो लोग समझते हैं हम एफिशिएंट हो रहे हैं. कोई क्या समझता है वो हम चूंकि इंसान है तो इंसान होने के नाते हमें बॉदर कर जाती है वो बात. लेकिन अगर आपका मकसद समझाना है हर वक्त हर चीज़ देखें नहीं अच्छी लगती ना, तो आप हर वक्त लोगों को समझाएं तो लोग क्या बोलते हैं. टीचर है, लेक्चर है, मुझे कितनी दफ़ा ये सुनने को मिला है. क्या मैंने लोगों को समझाना छोड़ दिया? नहीं. उस शख्स को जिसने ये रिस्पॉन्स दिया हो शायद उससे मैं किनारा कशी कुछ अरसे के लिए इख्तियार करूँ. मैं जितना मर्जी चाहूँ कि वो यू नो एहतियात करे किसी चीज़ का या मैं अच्छी नीयत से कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत समझ रहा है या मैं गलत कर रही हूँ. एवरी थिंग इज़ नॉट लाइक दैट, राइट. कोई रूडली बात करे अगर या मुझे रूडली लग रहा हो तो मैं मेरे पास है ना, अगर आप कहना मेरी आदत है यार मुझसे कंट्रोल नहीं होता या मेरा, मैं तो हमेशा चाहता हूँ मुझसे रोका नहीं जाता अपने आप को, मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा हो जाएगा इसलिए मैं बताता हूँ, यू डोंट हैव टू. इसकी दो वजूहात हैं. एक ये कि किसी को भी नहीं लगता, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता है कि वो हर वक्त ये समझे कि आपकी नीयत क्या है. किसी के लिए मुमकिन नहीं होता हर वक्त. अगर आप कोई आपकी कोई फितरत जानता भी तो इट्स नॉट. और अगर आप हर वक्त तजवीज़ देंगे हर चीज़ के बारे में, वाई डोंट यू ट्राई दिस. और ये मैं अपने एक एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि आई यूज टू बी दिस काइंड ऑफ अ पर्सन ऑल्सो. अब मैं किसी प्लेटफॉर्म पर बैठी हूँ या मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ या मैं कोई डिकन्स्ट्रक्टेड सेशन या मेंटरिंग सेशन कंडक्ट कर रही हूँ, द थिंग्स दैट आई डू, वहाँ तो मैं दूंगी तजवीज़. लेकिन अगर मैं बैठ के गुफ्तगू कर रही हूँ और कोई बात कहे और मैं उससे रिलेट कर सकूँ तो या तो कोई बहुत ही करीबी दोस्त हो ना उसके साथ भी, खैर वन शुड नॉट ऑलवेज, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है दैट यू बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन बाई टेलिंग द पर्सन. तो आप सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा दुरुस्त करें. लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, आपकी अपनी जजमेंट है ना, और आप बताना चाहते हैं किसी को फितरत है या फितरत नहीं है, तो देन योर फोकस शुड बी आई थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल. उसके रिस्पॉन्स के बाद देन यू कैन डिसाइड कि उस शख्स को दोबारा बताने की नहीं. लेकिन आप दिल बर्दाश्ता मत हो कि आपने किसी और को नहीं बताना है बिकॉज यू नेवर नो कि किसका क्या फायदा हो जाएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा.